ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா சாப்டர் 6 வாஸ் நம்பர் 10. பகவான் கே முகாரவிந்த் சே நிக்லே ஹுவே இன் அத்யந்த ஹி பவித்ர சப்தோ கோ மேரே சாத் சாத் உச்சாரண் கர்னே கா பிரயாஸ் கீஜியே. பகவான் கேத்தே ஹே, யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதஹ ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷீர பரிக்ரிஹஹ. யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்தித ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷீர பரிக்ரிஹஹ. யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்தித ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷீர பரிக்ரிஹஹ. யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்தித ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷீர பரிக்ரிஹஹ. யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்தித ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷீர பரிக்ரிஹஹ. யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்தித ஏகாகி யத சித்தாத்மா நிராஷீர பரிக்ரிஹஹ. சப்தகாத் யோகி அர்த்தாத் ஜோ யோக சாதனா கர்த்தா ஹை, யுஞ்சித அர்த்தாத் கிருஷ்ண சேத்னா மே கேந்திரித் கரே, சததம் நிரந்தர் ஆத்மானம் அர்த்தாத் ஸ்வயம் கோ மன் ஷரீர் ததா ஆத்மா சாரா கா சாரா கேந்திரித் கர்னா ஹை உஸ்கோ யோகி யுஞ்சித சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஏகாந்த ஸ்தான் மே ஸ்திதா ஸ்திர ஹோகர் ஏகாகி அர்த்தாத் அக்கேலே யத சித் ஆத்மா மன் மே சதேவ் சச்சேத் நிராஷி கிசி அன்ய வஸ்து சே ஆகர்ஷித் ஹுவே பினா பரிக்ரிஹ ஸ்வாமித்வ கி பாவனா சே ரஹித் அர்த்தாத் சங்கிரஹ பாவ சே முக்த். அனுவாத் கிருஷ்ண கேத்தே ஹே கி யோகி கோ சாஹியே கி வஹ சதேவ் அப்னே ஷரீர் மன் ஆத்மா கோ பரமேஸ்வர் மே லகாயே ஏகாந்த ஸ்தான் மே ரஹே ஔர் படி சாவதானி கே சாத் அப்னே மன் கோ வஷ் மே கரே உஸே समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा. श्रील प्रभुपाद की जय हो. श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है. संक्षेप में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना. किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं, क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है. इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अपरोक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित ही होते हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषय ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। इतने पर भी इन सबों को अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का उपदेश दिया जाता है, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। मन को एकाग्र करने से के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए और बाहरी उपद्रवों से बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थिति को ग्रहण करे और प्रतिकूल परिस्थितियों को परित्याग करे, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने पर उससे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए जो परिग्रह भाव में उसे फंसाते हैं। ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यवंत हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्षतः कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना मृत का अर्थ है आत्मोत्म सर्ग, जिसमें संग्रह भाव अर्थात परिग्रह के लिए लेश मात्र भी स्थान नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी कृष्ण भावना मृत का लक्षण इस प्रकार बताते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जते निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम् उच्यते प्रापंचिकतया बुद्धया हरि संबंधि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम् भवदुक्थ्यते। अर्थात जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त न रहते हुए कृष्ण के संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रहत्व से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने ही प्रत्याग कर देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। भक्ति रसामृत सिंधु 2.255 and 256। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा भी नहीं करता। वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जा सकता है और कृष्ण भावनामृत के प्रतिकूल वस्तुओं को परित्याग कर दिया जाता है। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है, क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। चाहे वो आपके प्रिय मित्र हो, तटस्थ हो, मध्य हो, ईर्ष्यालु हो, शत्रु हो या मित्र हो, पुण्य आत्माएं हो, पापियां हैं, सब कुछ को बराबर देखना, इक्वल हर किसी को आपको देखना है। तो ये होती है योग आरूढ़ स्थिति। अब भगवान आज से हमें ये जो अष्टांग योग है उसमें प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जंगल में जाकर क्या क्या करना होता है, उसके विषय में बता रहे हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि पहले के अध्याय में भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं और अभी छठे अध्याय में भगवान योग पद्धति बता रहे हैं कि जंगल में जाओ और ध्यान करो। तो ये टॉपिक भगवान यहाँ पर क्यों लेकर आए? वास्तव में भक्तों, ये चीज भगवान इसलिए बता रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप कर्म योग बता रहे हो तो कर्म योग से मुक्ति कैसे मिलेगी। पहले भगवान अर्जुन तो क्या चाहते, कर्मों को छोड़कर संन्यास लेना चाहते, लेकिन भगवान कहते हैं कर्म योग करो तो कर्म योग से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म योग से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति कर्म योग से मिलेगी नहीं, लेकिन कर्म योग के द्वारा आप का शुद्धिकरण होगा ना, हृदय पवित्र होगा और फिर ये जो आप सोचते हो ना, ये मेरा अपना है, ये पुराना है, सॉरी ये अपना है, ये पराया है, ये मित्र है, ये शत्रु है, तो कर्म योग के द्वारा क्या होगा, शुद्धिकरण हो जाएगा। और वही स्थिति योग आरूढ़ स्थिति, योग आरूढ़क्ष होती है कि कर्म योग उसमें भी किया जाता है और शुद्धिकरण होता है। और उसके बाद क्या होता है, फिर योग आरूढ़ स्थिति आती है जिसमें आप जंगल में जाने के पात्र बनते हो। उसी तरह से भक्ति में भी ऐसे कर्मयोग करते करते हृदय पवित्र होता है, फिर आप अपना संन्यासी हो जाते हो। तो अभी आप नहीं कर सकते, इसलिए आप अभी पात्र नहीं हो। तो फिर पात्र बनने के बाद आप मोक्ष को प्राप्त करोगे, यानी मुक्ति प्राप्त करनी है तो डायरेक्ट से आप संन्यास नहीं ले सकते, पहले कर्मयोग के द्वारा आपको पवित्र बनना है, आपको शुद्धिकरण करना है। फिर इसके बाद अर्जुन बोलेगा कि जंगल में जाकर ध्यान करना बहुत मुश्किल है, ये तो मुझे संभव ही नहीं लगता। उसके बाद कृष्ण बोलेंगे कि ठीक है, आपके लिए संभव नहीं है तो फिर आप भक्ति करो। कर्म योग का संबंध या तो ध्यान योग से होना चाहिए, जैसे अष्टांग योग पद्धति है ना, उससे होना चाहिए, या कर्म योग का संबंध भक्ति योग से होना चाहिए या फिर ज्ञान योग से होना चाहिए। यानी कि कर्म योग जो है, खाली कर्म योग से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब आप कर्म योग, कोई लोग क्या कहते हैं कि भाई हम अपने कार्य तो कर रहे हैं ना, हम अपने कार्यों, अपने नियत कर्म कर रहे हैं तो इसी से मुक्ति। लेकिन भगवान हमें क्या बताना चाह रहे हैं, मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, कि कर्म योग का संबंध होना चाहिए, या तो ध्यान योग से जैसे ये अष्टांग योग है उससे, या फिर भक्ति योग के साथ, या फिर ज्ञान योग यानी संन्यास के साथ। ज्ञान योग, ज्ञान प्राप्त करके उसके बाद उसमें भी जो योगारूढ़ स्थिति है उसमें जाकर, तो ज्ञान योग से या फिर ध्यान योग से या भक्ति योग से कर्म योग का संबंध होगा तभी मुक्ति मिलेगी। तो पहले कृष्ण ने कहा कर्म योग का संबंध ज्ञान योग से आप नहीं कर सकते, क्योंकि अर्जुन डायरेक्ट से क्या करना चाहता था, संन्यास लेना। तो बोला अभी तुम्हारी वो स्टेज नहीं है, तुम पात्र नहीं हो तो ये नहीं करो। तो उस ना करने के लिए भगवान ने ये बताया कि देखो, कोई भी एक क्षण के लिए भी अपने आप को कार्य करने से नहीं रोक सकता, क्योंकि कार्य करना पड़ेगा, थोड़ी तो आपका कर्म आपको करना पड़ेगा, ये बहुत स्वाभाविक है और ये बहुत इजी है। तो कार्य करते करते आप पवित्र बनो, उसके बाद आगे फिर करेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, कर्म योग के बाद आप अष्टांग योग भगवान अभी बता रहे हैं कि फिर तुम अष्टांग योग यानी ध्यान योग करो। फिर अर्जुन ने कहा नहीं भाई, ये भी बहुत मुश्किल है, ये ध्यान योग मुझसे नहीं होगा। तो फिर क्योंकि अब कर्मयोग से ज्ञान, कर्मयोग का संबंध ज्ञान योग से भगवान ने पहले ही बोल दिया कि ये तुम्हारे लिए स्वाभाविक नहीं है, फिर अष्टांग योग यानी ध्यान योग से भगवान अर्जुन को बताया, तो अर्जुन ने कहा नहीं ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। तो फिर आगे अब जब हम सातवां अध्याय पढ़ेंगे ना, तब भगवान बताएंगे कि अब कर्म योग का संबंध जो है वो तुम भक्ति योग से करो, बहुत ही सरलता से आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हो, बहुत ही आनंद से, बहुत ही सहजता से तुम स्थिर हो जाओगे। तो फिर ये अब लेकिन फिर भी भगवान इतने करुणामय हैं, इतने कृपालु हैं कि वो हमारी इच्छा के अंदर हस्तक्षेप नहीं करते। भगवान ने हर जीव को फ्री विल का पावर दिया है और स्वयं भगवान भी ये उसकी इस मतलब स्वतंत्रता के बीच में नहीं आते। वो भगवान जो है वो जीव के ऊपर छोड़ते कि तुम्हारा जैसा मन करता है वैसे तुम सिद्धि को प्राप्त करो। सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम। और आप उसको किस तरह से प्राप्त करना चाहते हो वो हमारी इच्छा के ऊपर है और भगवान हमारी इच्छा का आदर करते हैं। इसलिए साधक को आहिस्ता आहिस्ता अपने मन को भौतिक वस्तुओं से हटाकर भगवान में लगाना है। तो श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं कि ब्रह्म हो परमात्मा, भगवान की तीन फेज बताए क्या, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ब्रह्म भी भगवान ही का तो अंश है, आंशिक रूप से भगवान की आध्यात्मिक किरण है जो निराकार स्वरूप है। परमात्मा जो समस्त प्राणियों के हृदय में बैठा होता है वो भी तो कृष्ण ही है, और वास्तव में कृष्ण जो साक्षात है वो भी कृष्ण ही है। तो जो लोग निर्विशेषवादी होते हैं, जो निराकार की भक्ति कर रहे हैं या जो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, वो भी इनडायरेक्टली कृष्ण भावना भावित ही होते हैं। वो भी तो कृष्ण भी तो मतलब कृष्ण से अलग तो कुछ भी नहीं है ना, उस वो भी तो कृष्ण के कारण ही, स्रोत तो कृष्ण ही है। तो अगर कृष्ण की तीनों फेस में से किसी एक को भी यदि अपने अपना केंद्र बना रहे हैं तो वो इनडायरेक्टली तो कृष्ण की ही भक्ति कर रहे हैं। हमारा जो कृष्ण भावनामृत का क्या लक्ष्य है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। तो कृष्ण को किसी भी स्थिति में अगर आप याद कर रहे हो, किसी भी है ना रूप में याद कर रहे हो, तो वो कृष्ण भावना भावित ही होगा ना, क्योंकि ये न कहना प्रकार है मन तो कृष्ण में ही लगा हुआ है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत ही सुंदर बात बताई है कि सर्वोच्च योगी वो होता है जिसका मन कृष्ण में लगा रहता है, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसे पता होता है कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है, उसी भगवान के अंश है। तो इसका परम सत्य के विषय में जो ज्ञान होता है वो बिल्कुल पूरा होता है, एकदम कंप्लीट ज्ञान होता है, क्योंकि भागवत महापुराण में साफ साफ कहा गया है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। जो वाकई में तत्त्ववेत्ता है वो ये बात को स्वीकार करते हैं कि भगवान के तीन फेस हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। ये तो जो ये जानता है कि ब्रह्म भी भगवान का ही अंश है, परमात्मा भी भगवान का ही अंश है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही सब निकले हैं, तो उसका ज्ञान संपूर्ण होता है। परंतु फिर भी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको भगवान की भक्ति करनी है। आप इसीलिए प्रभुपाद जी ने बताया कि हर किसी को ये आदेश दिया जाता है कि आप जो भी अपने अपने कार्य कर रहे हो उसी के अनुसार निरंतर लगे रहो, देर सवेर कभी न कभी परम सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। तो हर व्यक्ति जो योग भगवान के साथ जोड़ता है उसका पहला कर्तव्य क्या है कि कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र करे, उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। वास्तविकता सिद्धि इसी से प्राप्त होगी। तो इसके लिए भगवान बता रहे हैं योगी युंजीत सततम। योगी का मतलब होता है जो वास्तव में भगवान के साथ योग जोड़ना चाहता है। जो अब योग पद्धति हम लोग पढ़े ध्यान योग के द्वारा, तो वो क्या करता है, युंजी तसततम। वो कंटिन्यूअस अपने चेतना को भगवान के अंदर या परम सत्य के अंदर केंद्रित कर देता है। ठीक है, जब उसकी चेतना उसके अंदर केंद्रित हो जाती है, तो यहाँ पर भगवान ने दो शब्द बताए हैं, रहस्य स्थित एकाकी। रहस्य का मतलब होता है, और एकाकी इसका मतलब होता है कि रहस्य मतलब एकांत स्थान में रहता है, और एकाकी मतलब अकेले रहता है। यानी कि योगी को भीड़ नहीं पसंद होती है, कि वो ऐसा नहीं है कि ऐसी जगह पर बैठकर आप नहीं भक्ति नहीं कर सकते, मतलब योग अभ्यास नहीं कर सकते जहाँ पर रश होती है। क्यों, क्या होगा? क्योंकि जब बहुत सारे लोग होंगे ना, तो वो भौतिक विषयों के ऊपर, उन टॉपिक्स के ऊपर कोई ना कोई बात करेंगे, कोई ना कोई बात निकलेगी, जिसके कारण आपका ध्यान जो है वो भगवान से हटकर किसी भौतिक वस्तु पर आ जाएगा। लेकिन उसको क्या करना है, रहस्य एकाकी, एकांत स्थान में जाकर उसको अकेले रहने की प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से भक्तों को भी कहा जाता है, संग त्याग सतोरते, कि हमें भौतिक व्यक्तियों का संग त्याग करना है। भक्त को भी भौतिक लोगों के साथ मिलने का, चैतन्य महाप्रभु ने तो कह दिया असत संग त्याग। यहाँ पर एक बात है कि योगी को और ना किसी का संग करने के लिए बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए क्या कहा, जनसंग से। आपको भौतिक लोगों का संग तो त्यागना है, परंतु भीड़ से दूर रहना है भक्तों को भी। लेकिन यदि भीड़ भक्तों की हो तो बात अलग है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं अकेला रहना लक्ष्य है, इसका मतलब ये है कि कृष्ण को के ऊपर मन को केंद्रित करना लक्ष्य है। तो जिस सिचुएशन में आप ज्यादा से ज्यादा अपने मन को कृष्ण में केंद्रित कर सकते हो, वो सिचुएशन को आपको एक्सेप्ट करना है। हर एक चीज को त्यागना नहीं है, ऐसा नहीं कि भक्तों का संग भी त्याग कर दे, बस मैं अभी अकेले में रहूंगा, जंगल में जाके तपस्या या फिर महामंत्र जप करूंगा, किसी से भी बात नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। हमें ये देखना है कि किसकी संगति से हमारा मन कृष्ण में अधिक से अधिक केंद्रित हो रहा है। और आगे बताया, एकाकी यत चित्तात्मा। चित्तात्मा का मतलब होता है कि मन में सदैव सचेत रहता है। चित्त का मतलब सबसे, जैसे आत्मा की एक चेतना होती है, जिसके कारण जीव को इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। अब वो चेतना किस में टिकी हुई है, उसके अनुसार जो है आपको नेक्स्ट जन्म मिलता है। जैसे अब देखो, एक व्यक्ति बहुत कुछ देख सकता है, जब एक रूम में बैठे तो वो कुछ देख सकता है, वॉल देख सकता है, फर्नीचर देख सकता है, ड्रेसिंग देख, हर चीज जो रूम में है उसको देख सकता है। लेकिन अगर टीवी चल रहा होता है ना, तो क्या होता है, उसकी चेतना जो होती है वो फोकस होती है टीवी के ऊपर, फिर आजू बाजू क्या हो रहा होता है वो उसको दिखता नहीं है। तो योग अभ्यास का सबसे मेन जो पर्पस है वो क्या है, कि अपने चित्त को इधर उधर भागने ना दे। तो इस तरह से योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि उसकी जो चित्त की वृत्ति क्या है, कि वो हर एक चीज में आकर्षण ढूंढता है, परंतु योगी क्या करता है, एक ऐसे स्थान में जाता है जहां पर उसको कोई दूसरी वस्तु जो होती है वो आकर्षण करने वाली ना दिखे। तो फिर अपनी चेतना को फिक्स कर देता है सदैव सततम आत्मनम के, ना एक ही आत्मनाम का मतलब होता है निरंतर स्वयं अपने मन को भगवान की चरणों में या फिर जो है ना परम सत्य में एकत्रित कर देता है। और निराशी परिग्रह का क्या मतलब होता है, कि वो कोई वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करता, परिग्रह नहीं करता, संग्रह नहीं करता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, निराशीर परिग्रह, यानी कि उसे किसी भी अन्य वस्तु की ओर आकर्षित नहीं होना है, और उसे संग्रह भाव। जैसे योगी भी होते हैं, कुछ क्या करते हैं, वास्तव में योग साधना का लक्ष्य परम सिद्धि की प्राप्ति है, परंतु वो फिर योग साधना के द्वारा अलग अलग सिद्धियां प्राप्त करने में वो अटक रह जाते हैं। जैसे अणिमा, लघिमा और दूसरी जो है ऐसे योग के द्वारा जो उसको सिद्धियां प्राप्त हो जाती है उसमें अटक करेगा तो फिर परम सिद्धि जो है वो भूल जाते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह, कि किसी भी वस्तु के अंदर उसको परिग्रह करने में उसे फंसना नहीं चाहिए। वास्तव में ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण कार्यवंत हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावे। तो श्री प्रभुपाद ने कहा कि वर्ण जब तक आप उत्तम रस को चखोगे नहीं तब तक ये छोटे छोटे रस जो हैं वो आपको आकर्षित करते रहेंगे, लेकिन यदि आप उत्तम रस अर्थात कृष्ण भावना भावित होकर भगवान की भक्ति के रस का आनंद लोगे, इसलिए कहते भक्ति रसामृत सिंधु, ये ऐसा अमृत है रस का भरा हुआ कि एक बार किसी ने भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त कर लिया हो, लेश मात्र भी उसके हृदय में भौतिक वस्तुओं को भोगने की इच्छा नहीं रह जाती। इसी श्री प्रभुपाद ने अत्यंत ही सुंदर यहाँ पर एक श्लोक लिखा है, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जते, कि किसी भी वस्तु के प्रति अनासक्त हो जाता है वो व्यक्ति, और फिर भी अनासक्त होने के बाद भी वस्तुओं का परित्याग नहीं करता, निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य कि वो ऐसा नहीं करता है हर चीज को ये मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, ये मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, इधर ये नहीं यूज कर रहा, हर एक चीज को यूज कर रहा है निर्बंधे कृष्ण संबंधे, लेकिन किसी यूज करना है? जैसे योगी इत्यादि होंगे वो धन को लाइक नहीं करेंगे, बोलेंगे कि नहीं धन हमारे बाधा क्रिएट करेगा, लेकिन भक्त श्री प्रभुपाद जी बोलते मुझे मुझे और भी मनी दो, मुझे और भी धन दो, ज्यादा धन चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा भगवान की अच्छी सेवा कर सकूं, मंदिर स्थापित कर सकूं, बुक प्रिंट्स करा सकूं। तो वस्तुओं से नफरत नहीं करता, वो क्या करता है वो हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगा देता है। इसको कहते हैं यथारम उपयुञ्जते, यानी वो इन समस्त वस्तुओं को यूटिलाइज करना जानता है, किसलिए कृष्ण संबंध के। वास्तविक वैराग्य क्या है? वास्तविक वैराग्य ये नहीं है कि रास्ते में आपने पैसे धन या कुछ भी पड़ा हुआ देखा उसको छोड़ के चले जाओ कि भाई नहीं मैं इसकी ओर आकर्षित नहीं हूँ। वास्तविकता क्या है? वो वस्तु उठाओ और जाके उसके अंदर जो कार्ड लिखा हुआ है कि इसकी है, आप उसको दे दो कि आपकी अमानत है, ये किसी तरह से मेरे हाथ आ गई, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आप तक पहुंचाऊं। तो संसार में जो कुछ भी है वो भगवान श्री कृष्ण का है, और यदि हमारे हाथ आ गया है तो हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि उससे दूर भागे, बल्कि क्या कर्तव्य है कि उसको कृष्ण को पहुंचा दे। क्यों? क्योंकि वास्तव में हम कृष्ण के दास हैं और हमारे स्वामी का जो कुछ भी है हमें उन तक पहुंचाना है। इसीलिए कहा मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्य फल भुगत्यते, कि अगर कोई वैराग्य करता है समस्त वस्तुओं का परित्याग कर देता है तो उसका वैराग्य क्या है? फल भुगत्यते, वो युक्त का वैराग्य नहीं है, वो फल गु है, ऐसे ही पूर्ण नहीं है उसका वैराग्य। श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि निर्बंध कृष्ण संबंधी युक्त वैराग्य मुच्यते, वास्तव में समस्त वस्तुओं को यदि हम भगवान के संबंध में यूज करते हैं, प्रत्येक वस्तु के अंदर ये आसक्ति नहीं रखते कि ये हमारे इंजॉय के लिए, ये भगवान की तृप्ति के लिए है, तो उसको युक्त वैराग्य मुच्यते। और अगर मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल गुच्छते, कि हर एक वस्तु को यदि हम सोचे कि नहीं नहीं ये वस्तु जो है वो हमारा जीव संसार में पतन कर देगी, तो परित्यागो मतलब हर एक वस्तु का त्याग कर देता है, तो रूपा गोस्वामी कहते हैं फलगु वैराग्य कहते थे। फलगु वैराग्यम फलगु, फलगु का क्या मतलब होता है जानते हो? फलगु एक ऐसा रिवर है जो बिहार में होता है, बिहार में एक ऐसी दरिया है, आप उसको देखोगे ना आपको ऐसा लगेगा कि उसके अंदर रेत ही रेत है, वास्तव में उसके अंदर जल है लेकिन दिखने में ऐसा लगता है कि केवल रेत है। अगर आप रेत समझकर उसके पास जाओगे तो आप ना गिर जाओगे पानी में, असली में तो वो रेत नहीं है, पानी है। उसी तरह से यदि हम हर वस्तु को परित्याग करते रहेंगे कि नहीं ये वस्तु ना हमें यूज नहीं करनी है, तो फिर क्या होगा, एक फल्गु वैराग्य होगा। क्योंकि वस्तुओं के अंदर हृदय से आसक्ति तभी समाप्त हो जाती है जब हम ये सोचते हैं कि वस्तु मेरी नहीं है, उसकी है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने अंतिम पैराग्राफ में अत्यंत ही सुंदर रीति से बताया कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भलीभांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, फलस्वरूप वह सभी प्रकार के परिग्रह भाव से मुक्त रहता है। वो समझता है कि जिसकी है उसके लिए यूज करना है, ये नहीं देखना वो नहीं देखना, हर एक वस्तु का उपयोग करता है किसी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इस प्रकार वह अपने लिए किसी वस्तु की लालसा नहीं करता, वह जानता है कि किस प्रकार कृष्ण भावना अमृत के अनुरूप वस्तुओं को स्वीकार किया जा सकता है और कृष्ण भावना भावित भावना अमृत की प्रतिकूल वस्तुओं का परित्याग कर। जो वस्तुएं हमें भगवान की भक्ति में उन्नति नहीं कराती हैं, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का संग या फिर ना ये संग्रह, इसके अतिरिक्त जो रूल्स है, उन वस्तुओं को यदि त्याग, उसको पता है कि इनका त्याग करूंगा तभी मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, तो किन वस्तुओं का त्यागना है जो प्रतिकूल वस्तु है, जो भक्ति में आपको इंक्रीज करने से रोकती है भक्ति आपकी, तो उनका त्याग करना है। बाकी समस्त वस्तुएं जो है वो ये जान के कि भगवान की है तो भगवान की सेवा में यूज करनी। वह सदैव भौतिक वस्तुओं से दूर रहता है क्योंकि वह दिव्य होता है और कृष्ण भावनामृत से रहित व्यक्तियों से किसी प्रकार का कोई सरोकार न रखने के कारण सदा अकेला रहता है। अकेला का मतलब ये नहीं है कि आप किसी का भी संग नहीं करो, अकेला का मतलब ये है कि आप ऐसे लोग का संग ना करो कि जिससे आपको कृष्ण के अतिरिक्त कहीं और आपकी चेतना को डाइवर्ट किया जा सके। हाँ, अब ये चॉइस उसके अंदर, भक्त बहुत बुद्धिमान होता है, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर, वो खुद ही अपना चॉइस देखेगा कि मैं इस किसी भी व्यक्ति के साथ यदि मैं बैठ रहा हूँ या बात कर रहा हूँ तो मेरी भक्ति उन्नत हो रही है या फिर मेरी भक्ति नष्ट हो रही है। जैसे उसको ये रियलाइज होता है कि यहाँ पर बैठकर तो और भी भक्तों की निंदा हो रही है, दूसरे भक्तों के विषय में हम बात कर रहे हैं, इससे तो और भी मेरी भक्ति खराब हो जाएगी, मुझे ऐसे लोगों का संग करना चाहिए जिससे मेरी भक्ति में उन्नति हो, यदि साथ बात करके मुझे कृष्ण के प्रति प्रेम जो हृदय में सोया हुआ है वो जागृत हो, जिससे कृष्ण के वाक्य को समझने, जो भगवान ने उपदेश दिए शास्त्र दिए उसको समझने का मुझे अवसर प्राप्त हो। लेकिन यदि हम फिजूल की बातें कर रहे हैं जिसमें कोई भी भक्ति में इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, तो वो उन चीजों का, उन व्यक्तियों का परित्याग करता है, इसलिए वो सदैव अकेला रहता है। अकेला मतलब ध्यान भटकने नहीं देता अपना। अतः कृष्ण भावना में इतने रहने वाला व्यक्ति पूर्ण योगी है। श्री प्रभुपाद ने अपना डिसीजन ले लिया कि योगी का क्या मतलब है, उसको क्या करना है, मन को कृष्ण में केंद्रित करना है। फिर वो भले दूसरे कृत्रिम विधियों से कर रहा है, लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है उसे पता होता है कि अपने मन को कृष्ण में किस तरह से केंद्रित करना है और किस तरह से सदैव ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम, मुझे कृष्ण को किस तरह से नहीं कभी भी भूलना है और सदैव उसे याद रखना है। उसके लिए फिर वो कोई भी कार्य कर रहा है, भक्त कार्य का क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर वो घर की सफाई कर रहा है, बच्चों को है ना स्कूल भेज रहा है, घर में प्रसाद बना रहा है या मार्केट में शॉपिंग करने जा रहा है, केंद्र बिंदु क्या है, मैं ये कार्य कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, तो फिर पूर्ण योग्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं श्रीमद् भगवद गीता के वाक्यों को अच्छी तरह से समझकर आप सबको अच्छे से समझा सकूं। हरे कृष्ण।